नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। प्रमुख एजेंडों में गृह विभाग की आरक्षी शाखा के तहत राज्य के 5 और जिलों में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद का सृजन का निर्णय शामिल है। इन जिलों को अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
गृह विभाग का एजेंडा था जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
श्री चौधरी ने कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। श्री चौधरी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
इधर प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की LNG तथा 45 दिनों का LPG भंडार उपलब्ध है।
किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रीगण निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से बिना अतिरिक्त वाहनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल, सरकारी एवं निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचार से मैं निधिश्री।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य और प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि बचत की मानसिकता विकसित करना समय की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें सलाह या सुझाव के तौर पर देश के नागरिकों को दी है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत कर सहयोग करने की बात कही है।
मैं राहुल कुमार मधेपुरा से। वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान का हम सभी समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और गैस में किल्लत हुआ है वो वैश्विक स्तर पर है और उसका हम सभी कैसे सहयोग करके भारत को इस संकट से बचा सकते हैं।
मैं सुधीर शेखर शिवहर का निवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता से अपील की है वो एक दूरदर्शी और सराहनीय पहल है। हम सभी नागरिकों को उनके इस सलाह का पालन करना चाहिए।
मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य की बात उन्होंने की, इसलिए वो जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं और इसको हम लोग को मानना चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 88.86% छात्र और 82.13% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की।
कोई भी जनगणना करने आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते, तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, राम तिल पर 515 रुपये तथा तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में कल देर रात STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अरवल जिले की अग्निशमन पदाधिकारी रश्मि की अध्यक्षता में 36 जगहों पर मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इस दौरान आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेताओं और समर्थकों से मुलाकात की। श्री कुमार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा शहर के रामबाग किला घाट के पास आज सुबह चेन छिनते की घटना का विरोध कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण SP के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराती ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।